ओम शांति। भराई का दशर्याचा फार फार शुभेच्छा। तो आज विशेष दिन है क्योंकि कल पूरे भारत में क्या किया पता है? क्या किया? रावण को जला दिया है। तो रावण को जलाने के बाद दूसरे दिन पे क्या होगा? खुशी का माहौल होगा। तो आप कितने अच्छे समय पे बाबा के घर में आए हो। और कल क्या विशेष करके क्या क्या करते हैं? कल के दिन काय काय केलं? महाराष्ट्र मध्ये काय करतात? सोनं वाटतात है। तो तुम्ही सोनं घ्यायला आलाय या सोनं वाटायला आलाय? बाबा के घर में सोना लुटाने के लिए आए है, लूटने के लिए आए। तो शुरुआत हुई, कल से ही शुरुआत हुई ना। कितने अच्छे ज्ञान रत्न आपको मिल रहे हैं बाबा के घर में। सबसे बड़ी बात तो आपको इतना अच्छा चांस मिला। मैं समझता हूं कई लोग तो ज्ञान सरोवर में पहली बार ही रुके होंगे। ऐसे हाथ उठाओ जरा। वाह वाह वाह, तो कमाल की बात है। बाबा ने आपकी दिल की बात सुनी, बाबा ने आपकी दिल की पुकार सुनी। क्योंकि मैं समझता हूं मैं करीब करीब ज्ञान सरोवर शुरू होने से इधर ही हूं, कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए थे। यहां 5-6 मास विदेशी होते, बाकी विंग के प्रोग्राम होते हैं, और हमारे भारतवासियों को चांस ही नहीं मिलता है। तो कोरोना भी हमारे लिए क्या हुआ? वरदान हो गया है ना। और सभी लोग इतने खुश होके जाते बाबा के घर से, इतनी अच्छी प्राप्तियां होती है। सबसे बड़ी खुशी तो कि हम ज्ञान सरोवर में रुके। कई लोगों के मुख से निकलता है हमको ज्ञान सरोवर में चांस मिला, ज्ञान सरोवर में चांस मिला। तो आप सभी क्या है? चांसलर। तो जैसे दीदी ने बताया कि हमें भी एक एग्जाम आया था, पेपर आया था। पेपर तो था लेकिन थोड़ा बड़ा था। तो उस पेपर को कैसे बाबा के साथ रह के कैसे जीत पाना, कोई चीज कहने के लिए तो बहुत सहज होता है ना। अरे कोई नहीं, ऐसा तो क्या है, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। लेकिन जब परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति को जब हम सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी अवस्था कैसी है, हमारा सोच कैसे है। क्योंकि परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है। आपको पता है शरीर की कीमत कितनी है? पता है? अमेरिका में इस पर रिसर्च किया तो इसकी कीमत, जैसे उंगली, नाक, कान, हाथ, हर चीज का कैलकुलेशन किया तो इसकी कीमत निकली 225 करोड़। कितना? तो परमात्मा ने आपको इतनी अच्छी गाड़ी दिया है, इतनी अच्छी मर्सिडीज गाड़ी है, उसकी कीमत कितनी है? 225 करोड़। तो उसको अपने को संभालना भी अच्छा चाहिए ना, ध्यान रखना चाहिए। ध्यान भी रखो और उसका यूज भी करो। तो जब मुझे 2008 में कैंसर की विपदा आई और धीरे धीरे जैसे होता है कीमोथेरेपी ये सब होता है तो शरीर एकदम क्षीण हो जाता है ना, तो मुझे पता चला कि अरे परमात्मा ने हमें इतना शरीर अच्छा दिया, लेकिन अगर वो वीक हो जाता कितना तकलीफ हो जाती है उसमें। और नॉर्मल रूप में हम चल रहे, बैठ रहे, कुछ नहीं। तो मुझे एहसास उस समय होगा कि बाबा ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, उसको हमें एक्सरसाइज भी कराना है, वॉकिंग भी कराना है, उसका डाइट भी अच्छा होना चाहिए, मतलब इसकी संभाल भी अच्छी करनी है। हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है और उसमें हम केरोसिन डालते जाएंगे तो खराब हो जाएंगे ना। तो परमात्मा ने हमें शरीर दिया है तो इसको एक्सरसाइज करो, योग कराओ, ध्यान कराओ, इसका खाने पीने का भी ध्यान, कई लोग बोलते हैं ना कि भाई आज गैस हो गया, तो हमें हम इस शरीर के साथ कितने सालों से रहते, जैसे जन्म हुआ तब से साथ में रहते, तो हम शरीर का भी ज्ञान चाहिए हमें कि भाई आलू खाने से हमें तकलीफ हो जाती, गोभी खाने से तकलीफ आती, तो छोड़ दो उसको। जो चीजें खाने से हमें तकलीफ हो जाती उसको छोड़ दो। तो ये ज्ञान हमें उस समय मिला। तो मुझे याद है 2007 दिसंबर मास था, उस समय रामदेव बाबा आए थे नीचे मेडिटेशन हॉल में। उन्होंने हमें 15-20 मिनट प्राणायाम सिखाया, कहा कि प्राणायाम करो, आप लोग इतने अच्छे जगह रहते हो, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे करके। तो मैं प्राणायाम करना शुरू किया, रोज आधा घंटा 15-20-25 मिनट करता था। उस दो मास कंटिन्यू करने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरे पेट में कुछ है नाभि के बाजू में, तो मुझे नाभि खिसक गई ऐसा शुरू में लगा। लेकिन जब चेक किया डॉक्टर से तो पता चला कि ये गांठ है। तो हमारे पास डॉक्टर मेहता जी यहां आए थे, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा तू बॉम्बे चलो। तो दूसरे दिन हम बॉम्बे गए, तो पता चला बायोप्सी किए तो ये कैंसर है। तो जब रिपोर्ट आया ना, तो रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आपका रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, बाबा तो कहते ना पॉजिटिव होना चाहिए। मुझे पता ही नहीं था पॉजिटिव और निगेटिव क्या करके, तो मैं सोचा पॉजिटिव तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ एक बहन का लड़का था हमारा, उसने कहा कि पॉजिटिव माना आपको कैंसर है। जैसे उसने बताया तो एकदम आंखों के आगे क्या हुआ, देखो एक सेकंड में कैसा फर्क हो जाता है मैसेज से, आंखों के आगे अंधेरा छा गया एकदम। हम छठवें मंजिल जा रहे थे लिफ्ट से, जाते 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 बाबा के साथ बात किया, बाबा ये शरीर भी आपका है, मैं भी आपका हूं, अब मुझे तो कुछ नहीं करना है, करना है वो आपको ही करना है, क्योंकि आप ही सर्जन हो, आप ही डॉक्टर हो, हम तो आपके बच्चे हैं। तो लिफ्ट चलते चलते छठी मंजिल तक आते आते मैं एकदम रिलैक्स हो गया, जाके कमरे में सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन से जैसे कीमोथेरेपी होती है वो शुरू हो गई, जो भी, तो पहले कीमो हुआ, दूसरा हुआ, तो मुझे लगा ये तो कुछ भी नहीं, जैसे सलाइन लगाते क्या है, इसमें तो कुछ है, होता ही नहीं। जब तीसरा कीमो हो गया तो देखा खुजली होने लगी, ऐसे बाल खींचा ना बाल ही हाथ में आ गए सारे, अरे उन्हें कहा क्या हो गया करके, तो सारे बाल बिल निकाले। लेकिन मैंने एक संकल्प किया कि देखो ये पेपर मेरा है, दूसरों का नहीं है, मेरा है पेपर। और मैं इतने सालों से मेडिटेशन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, बाबा की याद कर रहा हूं, बाबा का ज्ञान सुना रहा हूं, और मेरा ये हिसाब किताब है। तो सबसे पहले ये मैं ब्लेम किसी को नहीं करूं, सबसे पहले क्या, अरे 25 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, 30 साल से, और बाबा मैं ही मिला तेरे को, ऐसा ऐसा होता है ना। तो बाबा के ऊपर मैंने ऐसा ये ब्लेम नहीं किया। दूसरा मैंने सोचा कि इस बीमारी को ज्यादा फैलाना नहीं, फैलाना नहीं, मैंने मैंने किसी को बताया नहीं, परिवार वालों को, किसी को, डॉक्टर को पता था, मेरे एक भाई को पता था, और मुझे, हमने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं, लीला चलता रहा। जब चार कीमो हो गए तब हमारे परिवार वालों को पता चला, तो बस फोन शुरू, फोन पे ही रोना। मैंने कहा क्या हुआ आपको, नहीं हमने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने किसने बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, नहीं हमने सुना है। मैंने कहा आपने गलत सुना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो मैं उनको चुटकुले सुनाता था, हंसाता था, ये करते, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने हमारे दूसरे रिलेटिव है ना, उनको सुनाना शुरू किया, हमने फोन किया, वो तो बहुत अच्छा है। तो वातावरण में क्या हुआ, पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो गया, उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो तो अच्छा है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। और जो भी कोई पूछता था मैं उनको यही जवाब देता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। तो ये स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट उठाया। अब मैंने सोचा कि इतना समय मेरे पास आया, इतना टाइम है, मुझे क्या करना है, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो फ्री हूं। सबसे पहले मैंने देखा मेरे पेंडिंग काम क्या है। तो मेरा पेंडिंग काम था कि एक तो लिटरेचर पढ़ना, क्योंकि यहां सेवा में इतने बिजी हो गए, ध्यान ही नहीं पढ़ाई पे, तो पहले लिटरेचर जो जगदीश भाई जी ने लिखे वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। फिर दूसरा अव्यक्तवाणी, जो अव्यक्त मुरलिया एक लैपटॉप लिया उसमें देखता रहा। तीसरा कुछ लिखता गया थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और चौथा जो अभ्यास में थोड़ा थोड़े किए थे तो वो प्रैक्टिकल करना शुरू किया। जैसे जब कीमो होता था तो मैं उठ भी नहीं सकता था, तो खटिया पे लेटे 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 ड्रिल करता था, यहां से आत्मा जा रहे धीरे 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 परमधाम, परमधाम से नीचे आ रहे, यहां से ऊपर जा रहे, हजारों बार ये ड्रिल करता। तो उस समय मेरे को रिलैक्स मिलता था, जो दर्द आदि होता था वो नहीं होता था। तो मैंने ये तो अच्छी बात है। तो मैं कभी कभी इतना डीप साइलेंस में चला जाता, इतना डीप, मेरा जो भाई साथ में होता था, तुलसी भाई हमारा भाई था वो साथ में था, तो मेरे को ऐसा हिलाता था कि कहीं चला तो नहीं गया, ये इधर शरीर में है या नहीं है, इतना डीप साइलेंस में चला जाता था। तो ये अभ्यास चलते रहे। फिर थोड़ा थोड़ा कुछ लिखता गया जो भी टाइम मिलता, तो दूसरा काम तो था ही नहीं, कुछ काम तो करना ही नहीं था। तो हमने देखा वहां भी हॉस्पिटल में भी जब बढ़ाई बिड़ाई करते थे एकदम फ्रेश रहते थे, और अपना ही हॉस्पिटल था तो हम कभी कभी अपने ड्रेस पे रहते, सफेद ड्रेस पे। तो वो डॉक्टर आते थे ना, कभी कभी मुझे डांटते थे, अरे यहां क्यों बैठे आप, ये पेशेंट के लिए रखा हुआ है बेड, आप क्यों उसमें बैठते हो, ऐसे करके। बाद में उसको पता चलता यही पेशेंट है, तो सॉरी सॉरी करते थे। तो वो लोग हैरान होते थे कि पेशेंट होने के बाद भी कैसे रहते इतना खुश। जब डॉक्टर आते उनको भी बोलते थे कैसे डॉक्टर साहब थे, तबियत पानी ठीक है क्या, तो बोलते हम आपको पूछ रहे हैं, आप हमें पूछ रहे। तो ये बाबा की कमाल थी। और जो बीमारी को हमने अंदर घुसने नहीं दिया, हाँ ठीक है भाई गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया तो पंक्चर निकालो ना, उसको क्या दुखी होने से क्या फायदा। तो ये चीज सीखी। जब चार के मौके बाद जब मैं यहां आया तो जानकी दादी के पास गए मिलने के लिए। तो जानकी दादी के पास गए, बातें की थोड़ी, तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा गुलजार दादी के पास लेके गए। और गुलजार दादी को कहा देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया करके। तो गुलजार दादी तो बहुत ईजी है ना, कुछ नहीं ये छोटा पेपर है ना पास कर देगा। तो ये मेरा पहला वरदान वहां मिल गया। तो दादियों से भी हमें प्यार मिलता गया और वरदान मिलते गए। एक बार की बात है जब दादी गुलजार दादी जी वहां हॉस्पिटल जो हमारा बॉम्बे का हॉस्पिटल है ना बीएसएस हॉस्पिटल वहां आए थे कोई उद्घाटन करने के लिए, कोई अकाउंट ऑफिस था। तो क्या हुआ दादी आई और बाजू में ही मेरा रूम था, तो दादी को किसी ने बताया नहीं, तो दादी नेपेंसी रोड दूसरे सेंटर पे चले गई। उधर एक भाई ने दादी को बोला दादी सुभाष कैसे है। अच्छा कहाँ है सुभाष। दादी आप हॉस्पिटल जाके आए वहां ही था ना। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, लगाओ फोन लगाओ उसको। तो वो भाई ने फोन लगा के दिया। तो दादी जी ने देखो क्या बोला, दादी जी ने जब फोन पे बात हो रही थी दादी जी ने कहा देखो ना हमसे एक भूल हो गई। मैंने कहा दादी आपसे कौन सी भूल, आपको पता नहीं था ना। नहीं नहीं भूल तो भूल होती ना, मैं हॉस्पिटल में आई और आपसे मिली नहीं। तो मेरे तो एकदम जैसे दादी ने फोन किया, दादी मेरे को ऐसे बोल रही। तो दादी जी ने कहा देखो अभी जल्दी से जल्दी तैयार होके सेवा में लग जाओ। ऐसे दादी का ये दूसरा वरदान मिल गया। लेकिन उस रात को पूरा रात मुझे नींद नहीं आया कि जैसे कि नहीं बाबा ने मुझे बाबा मेरे साथ बात कर रहा है, अव्यक्त बाबा ने मेरे से बात की, ऐसे करके आंखों से ऐसे पानी बह रहा है और पूरा एकदम खुशी खुशी एकदम, क्योंकि दादी जी ने फोन किया और दादी जी जैसे वरदान दिया। तो ऐसे वरदान मिलते गए। तो हमने देखा कि कोई भी चीज को अगर हम उसको पॉजिटिव रूप में ले लेते तो कैसे हम उसको मददगार बन जाते, उसको कैसी हेल्प मिलती है हमें। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा कि जाना फिर आना जाना आना। तो उस समय मैंने फिर थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू किया, अच्छा लगता था क्योंकि टाइम तो बहुत था। तो जब मैं एक बार यहीं दादी से मिलने गए थे, एक हमारे साथ भाई थे शांतिवन गए थे, तो दादी जी समाचार ले रहे थे कि विंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, ऐसे वैसे बातें चल रही थी। फिर दादी जी बोले अच्छा तो हमें रुकना मैं अभी आती हूँ। तो हम बैठे थे, दादी के बेडरूम में बैठे थे। तो जैसे ही दादी वापिस आई तो दादी जी के हाथ में दो प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ऐसा नहीं हम लोग सर्व करते से। तो जैसे दादी सामने तो एकदम हम दोनों चौंके, दादी जी ये क्या कर रहे हो? तो दादी जी बोलती, अच्छा मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूँ तो आप लोग कितना खातरी करते, मैं भी करूंगी। तो इतना दादियों का हमें मतलब प्यार मिलता था। तो जब ये कैंसर की बातें चल रही थी तो क्या हुआ, जब टोटल कैंसर क्योर हो गया, ठीक हो गया, तो हमारा रिपोर्ट अच्छा आ गया, मतलब अभी निगेटिव रिपोर्ट आ गया हमारा करीब 12 कीमो होने के बाद। जब इधर आए तो सब पूछने लगे, बात हुई तो किसी ने कहा, मिलने लगे, कैसे रहा आप कैसे। तो उस समय एक मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, कैंसर के पीरियड में ही मैं अपने कमरे में बैठा था और कमरे में बैठ के उसी समय बाबा की अवयक्त मुरली चल रही थी, शांतिवन में गीत बज रहा था, एफएम रेडियो चल रहा था, उसमें सुन रहा था। तो मेरे कमरे में बाबा का ट्रांसलेट का पिक्चर था, जस्ट बाबा मुरली शुरू करने वाले थे, इतने में मैंने बाबा के साथ ऐसी बात किया, बाबा 25,000 लोग उधर आए हैं, आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। ऐसे बाबा के साथ बात किया और मेरे आंखों से ऐसे पानी ऐसे आ रहा था। तो मैंने देखा कि वो ट्रांसलेट से धीरे 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 बाबा मेरे तरफ आते, मेरे बाजू में बैठते और पूरी 1.25 घंटे की मुरली बाबा ने मुझे डायरेक्ट ऐसे सुना रहे मुझे। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर आई, मैं तो सोचा क्या, कितनी खुशी। जैसे मुरली पूरी हुई तो मैं उठ के डाइनिंग में आ गया, उधर डाइनिंग में चक्कर लगा रहा था तो सब लोग मेरे को मुंह देख रहे, अरे इधर क्यों आया, तेरी तबीयत ठीक नहीं, इधर क्यों आया, तेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं तो इतना नशे में, इतना खुशी में। तो मैंने देखा कि भगवान को, शिव बाबा को सच्चे दिल से अगर हम बुलाते पुकारते तो कैसे हमें मदद करता है, कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे हमारे सामने आ जाता है, वो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। ऐसे ही जब मैं यहाँ हमारे पास डाइनिंग में सुरेश ओबेरॉय और शिवानी दीदी आई थी, तो ऐसे बात करते करते मैंने थोड़ा ज्ञान की ये जो अनुभव है सुनाने लगा, ऐसे ऐसे ये अनुभव हुआ, ये दादी ने ये किया फलाना। तो शिवानी बहन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये हमको मत सुना, इसको लिखो, इसको लिखो, लिख के ज्ञान अमृत में डालो। तो मुझे अंदर अंदर हंसी आ रही थी, ये क्या लिखने जैसी चीज है क्या। तुमने कहा चलो बोल दिया तो थोड़ा शुरू कर दिया। तो हमने थोड़ा थोड़ा याद जैसे जैसे आया थोड़ा लिखा, और एक हमारे भाई थे गोविंद भाई, उसको दिया, तो उसने थोड़ा ठीक ठाक करके ज्ञानामृत प्रेस में दे दिया। तो जैसे उधर प्रेस में गया, उन्होंने छाप तो दिया, फिर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया, फिर उसका मराठी गुजराती सब भाषाओं में। मेरे तो हैरान हो गया, अब क्या हुआ, सबको पता चल गया उसके कारण। और बाबा का सीजन शुरू था तो जो भी आए यहाँ, सुभाष भाई कहाँ है, सुभाष भाई कमरे में जाने नहीं देते थे, रेस्ट ही नहीं करने देते थे, क्योंकि उनको लगता था इतनी बड़ी बीमारी से निकल गया तो चलो बात करते हैं। तो इस प्रकार से उस चीज को किसे बाबा कैसे सेवा में यूज करता। मुझे याद है एक बार मैं जानकी दादी से मिल रहा था, तो जानकी दादी मुझे ऐसे बोलती, तेरी बीमारी है ना बहुत सेवा करेगी। मेरा अंदर अंदर हंस रहा था, ये बीमारी जिंदा भी रहे तो ठीक है, ये कौन सी सेवा होने वाली इससे। लेकिन मैंने देखा कि दादियों के बोल कितने वरदानी होते हैं। जब मैं यूरोप गया, लंदन, इंग्लैंड के जो फ्रांस अमेरिका, फिर अमेरिका गया, तो जहां भी जाता था ना तो सब लोग जब ज्ञान सुनाना शुरू करते थे, अच्छी अच्छी बातें सुनाना शुरू करते थे, वो बीच में खड़े हो जाते थे, नहीं नहीं हमको ये नहीं सुनाओ, वो आपका कैंसर वाला अनुभव सुनाओ, बस फिर शुरू हो जाता था। तो जहां भी जाते थे वही सुनाना पड़ता है, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। तो एक बार मैं कनाडा में था, वैंकूवर में अनुभव जैसे अनुभव सुना, तो वो एक माता उठ के रोते 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 आई सामने, बोलती पता है आपको किसने बुलाया। मैंने कहा किसने, हम आए हैं। नहीं मैंने बुलाया है। मैंने कैसे बोलता है, जब मैंने आपका पीस ऑफ माइंड में अनुभव सुना, ये हुआ रिकॉर्डिंग हुआ पीस ऑफ माइंड में, तो तब से मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से मिलना है। आज देखो बाबा ने आपको मेरे सामने भेज दिया, कितना नशा से बोल रही थी। तो देखो माताओं की जो पावर थी, शक्ति होती है ना, कितना मतलब बाबा उनका सुनता है। बाबा कैसे, अगर पॉजिटिव चीज अगर अपन स्वीकार करते हैं तो उस चीज को, हमने परसों एक शिव मूर्ति में एक माता जी का अनुभव सुना, उन्होंने सुनाया कि वो कहीं गिर गई तो तीन जगह फ्रैक्चर हो गई तो हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने कहा ये कोविड का टेस्ट कराओ, तो उसको पॉजिटिव आया तो उसने कहा 14 दिन भाई उसको एक कमरे में बंद करो, तो जैसा था वैसे उसको बांध बूंद के 14 दिन कमरे में रखा। 14 दिन के बाद फिर हॉस्पिटल में गए, चेक किया तो डॉक्टर बोला अरे तुम्हारा तो ठीक हो गया, कुछ करने के पहले तो बोला ऑपरेशन करना है, फिर बाद में नहीं जरूरत नहीं, और 21 दिन के बाद फिर चेक करते, जब 21 दिन के बाद एक्सरे निकाला तो एकदम ठीक। तो उसने कहा कि बाबा कितना चतुर सुजान है, अगर मुझे कोरोना नहीं होता तो मेरा तो तोड़ मतलब ऑपरेशन करना था, लाखों रुपए खर्चा होना था, तो बाबा ने कैसे मेरा बचाया, बाबा कितना चतुर सुजान है जिसने मुझे ये ऑपरेशन करने से भी बचा दिया। तो ऐसे हम सोचते कि बाबा को क्या पता, बाबा सब पता होता है, लेकिन हम लेने वाले कैसे, हम कैसे इसको स्वीकार करते, हम कैसे इसको लेते, तो इसके पर आधार है। तो मैं उस समय एक अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास करता था, जब भी मुरली में बैठो, योग में बैठो, आप भी कर सकते, सिंपल अभ्यास है कि बाबा को बहुत दूर नहीं देखता था, बाबा मेरे नजदीक है, यहाँ नजदीक है, और बाबा से मेरे ऊपर यहाँ ब्रेन से धीरे 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 पूरे शरीर में ब्लू वायलेट कलर की रेज आ रही है, ब्लू वायलेट कलर, और धीरे 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 पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है, और शरीर के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो निगेटिव जर्म्स है, वो भस्म हो रहे। ये मैं घंटों घंटा अभ्यास करता था, जब भी टाइम मिलता था, जब भी हम योग में बैठते तो यही अभ्यास करता था कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं, मेरे शरीर के अंदर कोई भी जर्म्स नहीं है, सब जल के भस्म हो गया, सब जल के, ऐसे करके योग करता था। तो धीरे धीरे देखा कि इतना पावरफुल, जो मैं बीमारी के पहले जैसे शरीर था उससे भी शरीर इतना पावरफुल हो गया। तो जब हम ये योग या अभ्यास करते हैं तो कोई भी बीमारी, कैसे भी बीमारी हो, लेकिन आप इस प्रकार पॉजिटिव वाइब्रेशन लेते जाओ तो आपके अपने आप चेंज हो गया। जैसे बाबा कहते हैं ना, कंचन काया हो गई, बाबा इतना शरीर में इतना पावर भर देता है, इतना शक्ति देता है। तो ये अगर हम बाबा से साथ कनेक्ट रहते, बाबा के साथ कनेक्शन में रहते, तो ये बाबा अपने आप अनुभव भी कराते और ताकत भी देते, शक्ति भी देते। तो कई बार मैंने देखा कि जैसे कि ये बीमारी के पीरियड में हमारे परिवार बहुत बड़ा है, सर करीब 60 लोग ज्ञान में है, तो कोई बहन की लड़की, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए हुए। तो पहले हमारे दो भाई की लड़की आई इधर सेवा में, क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होता था, तो बिना मिर्ची का खाना, बिना तेल का खाना, ऐसा करने के लिए आई। तो क्या हुआ, पहले एक मास हुआ, दो मास, और साथ साथ आर्ट गैलरी में सेवा करते थे। जब वो 3 मास हुआ तो एक कन्याओं की बट्टी थी उसमें भेज दिया उनको, वो ब्रह्मा कुमारी बन गया। आज वो एक पार्ला सेंटर पे है, एक यहाँ बोरोली सेंटर पे वो चली गई। फिर उसके बाद 2 और आई, वो भी सेवा करती रही, फिर वे आर्ट गैलरी इधर करती रही, फिर वो भी चली गई, वो भी सेंटर पे। तो बाबा के साथ जब मैं बात करता हूँ तो बाबा को पूछता हूँ, बाबा ये आपने बीमारी दी थी या आपने मुझे गिफ्ट दी थी, क्योंकि इसमें मेरे को नुकसान कुछ नहीं, इसमें तो फायदा ही फायदा हुआ। एक तो इन लोगों, काफी लोग ज्ञान में चलने लगे, दूसरा ये 4 ब्रह्मा कुमारी बन गई, तीसरा मुझे लिखने के लिए एक बाबा ने अच्छी कला दी, कैसे आर्टिकल, जो आजकल मैंने करीब 100 आर्टिकल दादी के लिए लिखे, जानकी दादी लिखते रहते, तो ये बाबा की कमाल है ना। बाबा ने इतना सारा मतलब खजाना दे दिया, तो बाबा के साथ मैं बात करता हूँ, बाबा ये आप बीमारी दी थी या आपने मुझे गिफ्ट दिया था? तो ये गिफ्ट रूप में अगर आप स्वीकार करते हैं तो उसको बहुत सारा हमें फायदा मिलता है। तो मुझे याद है जब ज्ञान सरोवर शुरू हुआ था तो हम यहाँ आना भी नहीं चाहते थे। एक दिन मैं और सूरज भाई ऐसे आंगन से जा रहे थे तो प्रकाशमणी दादी जी उधर आंगन में बैठी थी पांडव भवन में, तो दादी जी ने कहा सूर्य इधर आओ। तो सूरज भाई को बुलाया था, लेकिन हम तो साथ साथ गाड़िया बरोबर नाड़ी यात्रा से हम भी साथ में गए। तो जैसे उधर गए तो दादी जी ने कहा सूर्य दादी को बहुत चिंता हो रही है। तो सुने क्या चिंता दादी, बाबा तो है ही ना। नहीं नहीं, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना है, इसको कौन संभालेगा, इसको सेवादारी चाहिए, इसको सारा रन करना है, इतने सारे डिपार्टमेंट है। तो कोई नहीं दादी, हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब सूरज भाई। तो दादी जी ने तुरंत कहा कि तुम जाओगे? सूरज भाई को कहा जी दादी आपको तो हम भी जाएंगे। तो जैसे ही दादी जी ने कहा कि तुम जाओ, तो बोले दादी ने इसको भी लेके जाना साथ में। तो उस समय तो मन नहीं था, लेकिन धीरे 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 फिर मन भी लग गया कि दादी जी को हमने हाँ भी बोल दिया, तो अभी हमारे बीच में हमारी दीदी आने वाले, तो मैं आपको दीदी की एक बात सुनाता हूं। सबसे पहले मैं 1983 में आया था इधर, तो मुझे सेवा में कोई नहीं रखता था। दसवीं का लड़का था, छोटा सा बच्चा था, तो मेरे को सेवा में, तो उस समय अचानक माताओं की बड़ी पार्टी आई और फिर सेवादारी के वहां छोटे हॉल में गए, तो वहां संतोष दीदी थे और प्रभा दीदी। तो शांतमन दादी, ये क्या करेगा बच्चा? तो संतोष दीदी ने कहा दादी सेवादारी बहुत कम है, इसको हम सेवा लगा देंगे। बोले क्या करेगा सेवा? इसको एक पानी का जग देंगे, ये पानी सबको बांटता रहेगा। तो अभी तक मैं पानी बांट रहा हूं सबको।